आज हमारा बहुत सौभाग्य है हमारे बीच आय समाज के एक बहुत कर्मठ युवा कार्यकर्ता भारत से आए हैं और मुझे उनका परिचय देने में बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरा उनसे और उनके परिवार से बहुत पुराना परिचय है। श्री पीयूष आर्य अभी चेन्नई से आए हैं, कल आए थे और आज वापस यहां से शिकागो चले जाएंगे। थोड़ा सा 24 घंटे का उनका यहां का प्रवास है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा समय रखा है। इनका जन्म तो कलकत्ते का है जहां का मेरा भी जन्म है, लेकिन सारा बचपन इनका चेन्नई में बीता। स्कूली शिक्षा और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने बैचलर डिग्री भी प्राप्त की। इसके बाद ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे भारत में आईआईटी है इंजीनियरिंग संस्थान, वैसे ही मैनेजमेंट के संस्थान आईआईएम है जो अहमदाबाद और बेंगलोर और कलकत्ता इंदौर ऐसे हैं। तो ये एमबीए करने आईआईएम बेंगलोर गए, उसके बाद इन्होंने कंसल्टेंसी कंपनियों में काम किया है, मैकेंजी में काम किया, बाद में हे ग्रुप में, और अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने डेलॉयट को ज्वाइन किया है, अच्छी वरिष्ठ पोजीशन पर हैं। लेकिन आय समाजी परिवार से ये जुड़े हुए हैं, बचपन से ही इनमें वैसे संस्कार हैं। इनके दादाजी श्री पुष्कर लाल आय आय समाज कलकत्ता के बहुत अच्छे कार्यकर्ता और नेता थे, जिनकी छवि मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरा बचपन कलकत्ते का है और मैं आय समाज कलकत्ता मेरे लिए माँ और पिता के समान है। अभी भी जब भी मैं भारत जाता हूँ आय समाज कलकत्ता अवश्य जाता हूँ। तो उस आय समाज कलकत्ता के श्री पुष्कर लाल आय जी के ये पौत्र हैं। इनका बचपन चेन्नई में बीता है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये आय समाज चेन्नई से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और संयोग ऐसा भी हुआ कि जब मैं अपना वैदिक मिशनरी बन गया आज से 21 साल पहले, लगभग 22 साल पहले, तो मैं हैदराबाद में था, चेन्नई ज्यादा दूर नहीं है, तो हर वर्ष मेरा चेन्नई जाना होता था। तो आय समाज चेन्नई और उनकी एक एजुकेशनल संस्था है, जैसे आयुष्मान ह्यूस्टन की एक स्कूल है पीछे, और उनकी संस्था का एक नाम है तमिलनाडु आय एजुकेशन सोसाइटी, और उनके 7-8 बड़े बड़े स्कूल हैं। एक एक स्कूल में 1,500-2,500 बच्चे पढ़ते हैं, जो 10+2 वहां कहलाता है, उस स्तर के स्कूल है। तो मैं तो प्राय सभी स्कूलों में मेरे व्याख्यान हुए हैं वहां पर। तो जब मैं जाता था उस समय कर्ता धरता थे श्री अमर कालिया जी, वे जब दिवंगत हो गए तो उनके सहयोगी थे श्री जयदेव जी। जयदेव जी के साथ भी मिलकर मुझे काम करने का बहुत मौका मिला, और वहां जो 7-8 स्कूल हैं वहां पिछले 11-12 सालों से मेरी एक पुस्तक है जो आप में से कुछ का पता होगा, एज सिंपल एज इट गेट्स, वो पुस्तक उन 7-8 स्कूलों में पढ़ाई जाती है मॉरल इंस्ट्रक्शन के रूप में। तो इस ख्याल से मेरा आय समाज की उन संस्थाओं से बहुत निकट का संबंध है। जयदेव जी की मुझे एक प्रशंसा अवश्य करनी होगी कि हमें अच्छे अच्छे नेता मिलते हैं, कभी कभी हमारे नेता ये भूल जाते हैं कि जब वे चले जाएंगे तो उस नेतृत्व को कौन संभालेगा। जयदेव जी ने यह बहुत अच्छा काम किया कि अपने अंतिम वर्ष में पीयूष जी को बहुत सारी जिम्मेवारियां सौंप दी, और इनके एक छोटे भाई भी हैं विकास जी। तो ये दोनों भाई मिलकर आय समाज चेन्नई और वहां के जो 7-8 स्कूलों का संगठन है उसको संभालते हैं। ये आधुनिक प्रबंध पद्धति जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं इन सबसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मैं सन 2000 से जो चेन्नई जाना होता था तब से मैं इनको देख रहा था, इनसे मेरा परिचय था। फिर ये अपने जॉब के सिलसिले में अपनी पढ़ाई के बाद दिल्ली गए, दिल्ली से ये मुंबई आए, मुंबई में भी मेरा इनका संपर्क रहा। तब इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया जिसको हम विचार टीवी के नाम पर जानते, बहुत एक्साइटमेंट था उस समय क्योंकि आय समाज के पास टीवी की एक पहुंच नहीं थी। अब तो स्वामी रामदेव जी के चैनल हैं, आस्था संस्कार आदि, और वो मैं पहले की बात बता रहा हूं। तो इन्होंने विचार टीवी खड़ा किया और उसके 5-6 साल जुड़े हैं आयुष्मा सांता क्रूज से इत्यादि इत्यादि। बाद में ये वापस चेन्नई आ गए हैं, जो इनका पुराना गढ़ था ये, और अब चेन्नई में इन्होंने आयुष्मा चेन्नई और आयुष्मा चेन्नई से जुड़े ये 6-7 स्कूल हैं, इसका प्रबंध देखते हैं दोनों भाई मिलकर। और इस बीच जैसा आप जानते हैं, आयुष्मा ह्यूस्टन ने देव जी के नेतृत्व में पौंडीचेरी में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जीवन प्रभात का, जो सुनामी के बाद जो अनाथ बच्चे थे उनको सहायता देने के लिए। तो अब वो उसको भी 10-12 साल हो चुके हैं, तो उस अनाथालय को आगे क्या ले जाना है भविष्य के बारे में देव जी और उनकी यहाँ की टीम बड़ी विचारों में लग्न थी। तब उन्हें ये अच्छा सूझा कि हम आयुष्मा चेन्नई और पीयूष जी के नेतृत्व में जो स्कूल का प्रबंध चल रहा है इनसे बात करें। देखिए 3-4 महीने में ही अभी दिसंबर में देव जी और सुषमा बहन जी वहां गए पौंडीचेरी, इनसे मिले। आपको आश्चर्य होगा 4 महीने में ही वो अनाथालय स्कूल बन गया, अब वहां स्कूल चल रहा है। स्कूल के रूप में उसकी भविष्य की बहुत सारी आशाएं हैं। उस एरिया में केवल ईसाइयों के ही स्कूल हैं, तो ये पहला है। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, ये 6-7 स्कूल जो हैं, इसमें कम से कम 2 स्कूल जो हैं तो आमने सामने गोपालपुरम एरिया बड़ा वैसा है, वहीं करुणानिधि का भी घर है, वहीं जयललिता का भी घर था, उसी सड़क पर इनके स्कूल हैं, बड़े ही प्रोमिनेंट है। वहां एडमिशन पाना आसान नहीं है, एडमिशन पाने के लिए भी बड़ी वो करनी पड़ती है, बहुत क्यू लगानी पड़ती। और ये भी मैं कह दूं, क्योंकि डीएवी बड़ा स्ट्रांग ब्रांड है भारत में, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में चित्रगुप्त रोड वाला, जिसके पास 700 के लगभग संस्थाएं हैं, जिसके आज जिसके अध्यक्ष हैं पूनम सूरी जी, जो महात्मा आनंद स्वामी जी के देवते लगते हैं। लेकिन ये इनका इंडिपेंडेंट है, ये चेन्नई ग्रुप जो 8-9 स्कूल वाला है, ये दिल्ली वाले चित्रगुप्त रोड से कनेक्टेड नहीं है, ये इनका इंडिपेंडेंट है। ऐसा ही अजमेर में था दत्तात्रेय वाबले वाला, तो उसी तरह से ये चेन्नई ग्रुप इंडिपेंडेंट है और इसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से लोग ह्यूस्टन में ह्यूस्टन आय समाज से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो दक्षिण भारतीय लोग हमारे स्कूल में बच्चे अपने भेजते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डीएवी स्कूल गोपालपुरम का बड़ा ही ब्रांड का इतना अच्छा जमा हुआ है कि जो भी चेन्नई से आता है वो तो जानता है कि डीएवी का मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो उसका लाभ पहले से ही हमें हो रहा है, हमारे स्कूल में जो बच्चे आ जाते हैं बहुत सारे डीएवी ब्रांड के कारण आते हैं, तो उस ब्रांड को ये संभाले हुए हैं। और अब हमारे स्कूल जो अनाथालय से जीवन प्रभात को अब डीएवी स्कूल बनाने का इन्होंने सहयोग दिया हुआ है, उसके बारे में, अपने बारे में और अपने आयुष्मान से संबंधित बहुत सी बातों के बारे में हमारे बीच चर्चा करेंगे श्री पीयूष आर्य।
आप सभी को नमस्ते और हरिश्चंद्र जी का धन्यवाद जो उन्होंने इतना बढ़िया परिचय मेरा दिया, मैं खुद सरप्राइज था, ऐसा परिचय मेरा आज तक तो मिला नहीं है मुझे। पर मैं हिंदी में बोलूं तो चलेगा या शुड आई स्विच ओवर टू इंग्लिश? ओके, तो मतलब 80% हिंदी 20% इंग्लिश, विल मूव विद दैट। द इंटेंट टुडे ऑफ दिस डिस्कशन, आज का जो मकसद है वो ये है कि आपको जो चेन्नई में हो रहा है या चेन्नई के पास पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी के नाम से कहा जाता था, आज पुडुचेरी है, वहां जो मैजिक हो रहा है जो आप लोगों ने शुरू किया है, उस मैजिक के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना और वहां पर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये भी रखना। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर एंड व्हाई इज इट हैपनिंग ओवर देयर। बट एज आई गेट इनटू दिस, मैं ये जानना चाहता हूं टाइम कितना है अपने पास? And how would I know if it's 11:45? Okay, there. ठीक है. 11:30. So 37 minutes. Thank you. So we will talk about both of these, and I'll straight away get to the point. First, my introduction has already been given. जो भी मैं कर रहा हूँ, ये एक सामाजिक कार्य के रूप में कर रहा हूँ. वैसे, I am employed with Deloitte Consulting, and I am a partner in the Human Capital Consulting over there. चेन्नई में मैं काम करता हूँ, पर travel हर जगह करना पड़ता है. Yeah, so I was in New York for some work. Next week I am in Chicago. Now we have got a partners meet over there. तो उसके लिए मैं इधर आया हूँ. पर इस तरीके से मैं हर जगह घूमता रहता हूँ. And I must say, और जहाँ भी मैं जाता हूँ, अगर इत्तिफाक से संडे का दिन ऐसा होता है कि मैं उस शहर में बिता रहा हूँ, और अगर वहाँ पर आर्य समाज है, तो I make it a point to be over there. तो मैं कई सारे विश्व के आर्य समाजों को देख चुका हूँ. And I must say that this is, and I was mentioning it to Mahajanji, this is possibly the most beautiful Arya Samaj that I have seen. And therefore it's my privilege to be here and speak amongst you. One more thing that I liked in particular about this Arya Samaj, of course, I mean, there is so much that I can talk for 30 minutes about this, but I would not take your time for that, but I just want to recognize a couple of things. We had initiated the concept of multimedia-based Arya Samaj 8 years back, which means our Arya Samajas don't need to just look like a simple plain hall, but they should be multimedia centers where every kind of communication should be possible to engage with the audience and youth and kids. The first multimedia Arya Samaj was established by our team with Punjabi Bagh Arya Samaj in Delhi. I think this Arya Samaj, I don't know when this got converted to a multimedia, but could have been the first, but whatever it is, it's certainly the best multimedia Arya Samaj I have seen, with the kind of facilities that are there to make these kind of presentations. So once again, a round of applause to you. Now coming to the introduction, I have talked about my professional introduction, but I am on weekends an active karyakarta of the Samaj. So that's the brief introduction. And as part of that two-day activity, you end up, or I have ended up working on a lot of assignments. But as I worked on those assignments, I have ended up meeting a lot of very, very interesting, like-minded people. And I find a lot of them amongst you over here. So I am very privileged once again to meet all of you over here. I move on. And we talk about who we are. Hum log kaun hai? You know, so it's not about me. Ye mere bare mein nahi hai. It's about the institutions that I represent coming over here. Arya Samaj Chennai Central. Iski sthapna bahut pehle hui thi. 80-90 saal pehle. Ye bahut purane Arya Samajon mein hai. Logo ko iska pata nahi chalta ki ye itna purana bhi ho sakta hai. Parantu 1920 ke aaspaas सबसे पहले चेन्नई में आर्य समाज बना था सौ कारपेट एरिया में. उसके कुछ दिनों बाद आर्य समाज बना था ट्रिप्लीकेन एरिया में, और फिर 1960 के दशक में एक और आर्य समाज बना, आर्य समाज गोपालपुरम. तो चेन्नई में तीन आर्य समाजें हैं. इन तीनों आर्य समाजों को एक साथ मैनेज करने के लिए एक संस्था बनाई गई, तमिलनाडु आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी, यानी आर्य समाज चेन्नई सेंट्रल. और उसके अंतर्गत, उसके नीचे ये तीन आर्य समाज माउंट रोड, ट्रिप्लीकेन और सौकापेट की काम करती है. माउंट रोड और सौकापेट की समाजें हिंदी में काम करती है, ट्रिप्लीकेन की समाज वहां की भाषा तमिल में काम करती है. इन आर्य समाजों में सत्संग होता है, हवन होता है, पर साथ में सौकापेट आर्य समाज में शुद्धि का कार्यक्रम चलता है. यहां शुद्धि से कितने लोग परिचित हैं? आप लोग सब, मैं एक मिनट में बता देता हूं. शुद्धि का वो कार्यक्रम है जिसमें कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक कारणों से और अन्य कारणों से लोगों का धर्मांतरण हुआ है, कहीं फोर्स के द्वारा, कहीं प्रलोभन के द्वारा, इत्यादि इत्यादि. और उनका एक बार धर्मांतरण होने के बाद में कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजियस फॉर्म और रिलीजियस बिलीफ अंडर फोर्स और अदर काइंड ऑफ सिचुएशंस नॉट इन देयर कंट्रोल, उनका कोई तरीका नहीं था कि उनको वापस हिंदू फोल्ड में एक्सेप्ट किया जा सके, क्योंकि उस समय के डॉगमास इतने स्ट्रिक्ट थे कि एक बार आप चले गए तो वापस नहीं आ सकते। तो आर्य समाज ने पहला आंदोलन शुरू किया था शुद्धि का, जिसमें कि स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि जो लोग गए हैं वो वापस भी आ सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वापस आ सकते हैं। तो इस शुद्धि के कार्यक्रम को चेन्नई आर्य समाज ने 80-90 साल पहले से ही शुरू कर रखा है और हर हफ्ते वहां पर शुद्धि का कार्यक्रम होता है। ऐतिहासिक बात यह कि महात्मा गांधी के जो बेटे हैं हीरालाल जी, वो मुसलमान बन चुके थे, उनका भी शुद्धिकरण चेन्नई आर्य समाज में वापस हुआ था, तो उनको वापस हिंदू फोल्ड में लाया गया था। अब हम लोग बीच में जाते हैं तो आर्ट स्कूल है, इसके बारे में डॉक्टर हरिश्चंद्र जी ने बताया ही है। आर्ट स्कूल में 15,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। साइज अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, पर मोर देन साइज इट्स द क्वालिटी, जिसके लिए हम लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं। मैं भी इसी स्कूल का स्नातक हूँ, आई हैव ग्रेजुएटेड और आई पास्ड आउट फ्रॉम दिस स्कूल इन 96, बोथ मी एंड विकास। तो इस स्कूल में इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स। क्वालिटी में कहें तो रिजल्ट जो है स्कूल के, इट इज अमॉन्ग्स द बेस्ट इन द कंट्री। आप अलग 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 सर्वेस देख लें और उन सर्वेस में आप पाएंगे कि अपनी कैटेगरी में, कैटेगरी का मतलब वो लॉजिंग बोर्डिंग स्कूल वगैरह को हटा करके जो रेगुलर स्कूल्स है उस कैटेगरी में, फोर ऑफ दीज एट स्कूल्स विल रैंक इन द टॉप 20। साथ में देर आर मेनी अदर सर्विसेज टू द सोसाइटी दैट वी प्रोवाइड। वी रन टू फ्री स्कूल्स इन टोटल अबाउट 600 स्टूडेंट्स। वेन वी से फ्री स्कूल्स, दिस आर स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट बींग चार्ज एनी फी। Recently, we have started charging a small fee because this puts some value to the education that they are being provided. Otherwise, it may be taken very lightly by some of the parents. Around 600 students over there. Then there are vocational training institutes, medical centers, जो free चलते हैं. और फिर हम लोगों ने एक village को वहाँ पर adopt किया. जब सुनामी आया था, तो जैसे कि वहाँ पर एक orphanage, आर्य समाज Houston ने शुरू किया, हम लोगों ने वहाँ पर एक village को adopt किया था, जिसका नाम था कई पानी कुप्पम। उस विलेज में जिन लोगों के घर तबाह हो गए थे, उन घरों को कंस्ट्रक्ट किया। सो नियर अबाउट 200 हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड, कम्युनिटी सेंटर्स वर कंस्ट्रक्टेड, ताकि वो उस विलेज वापस रीसेटल हो जाए। तो इस तरीके से डीएवी और आर्य समाज चेन्नई हैज बीन एक्सट्रीमली एक्टिव इन द स्पेस ऑफ सोशल सर्विस। और पुदुचेरी, डीएवी पुदुचेरी नाउ इज द 9th स्कूल दैट हैज गॉट एस्टैब्लिश्ड in coordination with Arya Samaj Houston. So this is what DAV is, or Arya Samaj Chennai is, in terms of social service. 15,000 students. Objective of the DAV group in education is to provide affordable modern education with Vedic values to build the nation. So iske teen attributes hai: affordable, modern and Vedic. These three attributes are kept in mind uppermost as we provide this education, and I can say that one of the product of that school is standing in front of you, so that itself will tell you what the school has given to me. And of course, it's the top ranked school in the country. When we say affordable education, let me say that the fee structure in that school is less than, is near about $500, $500 to $600 or $700 a year, right? Now, of course, we can't compare fee structures in dollars, but it doesn't cover the capital cost of the school, which has been collected through donation. The building cost, etc., is not collected from the students. There is no capitation fee. In India, there is a trend of capitation fee. So when students join schools, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs. That is the way in which the capitation fee goes. So there is no capitation fee, there is no donation that is expected of parents to give, right? And the fee structure is maintained at a level where any middle class person can attend the school or send his children to the schools. And the founder of DAV in Chennai, Sri Jaydev ji, who Dr. Harishchandra ji just talked about, he prided on the point that his own grandson would study in the same class एज इन विच द सन ऑफ द वॉचमैन, जो वॉचमैन का लड़का है और उनका खुद का पोता है, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, तो इस तरह का वहां का अरेंजमेंट है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ लोग इसलिए डीएवी में भेजते हैं ताकि इस इनकम गैप को बच्चे भी देखें, मतलब किसी ऐसे बच्चे के साथ उनकी फ्रेंडशिप है जो कि इनकम में बहुत नीचे है, तो दे अंडरस्टैंड कि किस तरीके से, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी दे आर स्टेइंग इन। तो इस कारण से बच्चों को भेजते हैं, और कुछ लोग इस कारण से ही बच्चों को नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इससे तीन गुना चार गुना फी चार्ज करते हैं, बट डीएवी हैज मेंटेन दैट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड इट ऑल्सो गिव्स स्कॉलरशिप्स टू दो स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो $500-$700 वैसे कुछ नहीं है, बट फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ऐसे एक बड़ा नेटवर्क है पेट्रेंस का जो कि फी को स्पॉन्सर कर देते हैं। हाउ वी बिगैन, नाउ व्हेन आई से वी, इट्स यू एंड अस टूगेदर, राइट। सो फर्स्ट, हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट बिगैन और बिगिन इन पुदुचेरी। 26 December 2004 is a date which mankind can never ever forget. इसका कारण ये रहा है कि ये वो दिन था जब 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में 2 लाख लोग, 200,000 people perished across 5 countries. मतलब इतनी बड़ी international tragedy इससे पहले हिस्ट्री में कोई नहीं हुई ना, जिसमें कि 15 मिनट के अंदर इतने सारे लोग खत्म हो जाएं, और इतने सारे लोग खत्म होने के साथ साथ में इसके कई गुना लोग बेघर हुए, कई गुना बच्चे अनाथ हुए। सो therefore 26th December विल ऑलवेज बी अ ब्लैक लेटर डे फॉर mankind. However, the days following, और मैं इतिहास को मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूं, मैंने ये पाया है कि जब भी कोई विपत्ति इतनी बड़ी आती है तो यू गेट द बेस्ट पीपल आउट एंड यू गेट द बेस्ट इन पीपल आउट, यू गेट द बेस्ट पीपल आउट एंड द बेस्ट इन पीपल आउट। सो ह्यूमैनिटी रेस्पॉन्डेड, एंड ह्यूमैनिटी रेस्पॉन्डेड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, फ्रॉम द सेम प्लेस एंड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। And one such response came from outstanding set of people who are present in this hall today, who cared for the trouble, who cared for the pain and suffering of those people who were thousands and thousands of miles away, and therefore established an orphanage over there to take care of the children, a small set of children who had got orphaned in this place called Puducherry. So near about 40 odd children were housed in a 2-acre plot, and thus was born Jeevan Prabhat Puducherry. Now moving ahead, this was way back in 2004-05. I am not going to repeat the history that you are all, I mean you were the ones who created that history, right? But as these children grew, right, we used to go there. मतलब मैं उधर पहले भी गया था, जब भी पौंडीचेरी जाते हैं तो मतलब ऐसा था कि जीवन प्रभात में जाकर के आए, क्योंकि connections तो हर तरीके से हो ही जाते हैं, ठीक ना। And those children had also come to DAV, had come to RE समाज, तो ये सारी चीजें हो सकता है यहाँ पर इतना पता नहीं चलती हो, but there was a local understanding or a coordination that was going on even earlier. To December 2016, but December 2016 में I got a call from Dr. Harish Chandra, who suggested that we should look at doing something in coordination, working together with RE Samaj Houston for the orphanage that is there over there. So this institution was an orphanage that was started, set up as a division of RE Samaj Gandhidham, but it was funded by RE Samaj Houston. 1.8 acres of land behind Pondicherry Institute of Medical Sciences, and it had about 10,000 square feet of constructed space, 12 classrooms, one office room, one residential unit, two activity room, and one large hall, and area is well landscaped, including play area for children. So these are some of the photographs. I guess you must have seen these photographs earlier, so I'm not going to spend too much time, but this was It was a very nice space. There were two questions that came up at this point. यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे थे कि एक तो बच्चे जैसे जो ऑर्फेनेज में आए थे वो बड़े हो चुके हैं तो उनका अब धीरे धीरे निकल रहे हैं तो बच्चों की संख्या कम होती जा रही है नए बच्चों को लेने का इंटेंट नहीं है या आ नहीं रहे हैं जो भी है परंतु उन बच्चों के बाद में इस संस्था का इतनी बड़ी जगह का इतने बड़े एसेट का किया क्या जाए ना पॉइंट नंबर एक पॉइंट नंबर दो ये था कि कोई जो भी सोल्यूशन था वो सोल्यूशन एजुकेशन के स्पेस में हो क्योंकि जो पैसा इसमें लगा था उसका इंटेंट ये था कि बच्चों को अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए इसलिए कैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को सपोर्ट किया जाए और कैसे एक ऐसे प्रोजेक्ट का या ऐसे ही इसको दिशा दी जाए जिससे कि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो सके तो इस इंटेंट के साथ में हम लोगों से कांटेक्ट किया गया इंटेंट ये था कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करें और इस जगह का उपयोग किया जाए और उसके बाद में व्हाट वाज बॉर्न आउट ऑफ दैट डिस्कशन तो महाजन जी और सुषमा जी आए थे चेन्नई में दिसंबर 18 तारीख को शायद हाँ 18 तारीख को और उस समय का जो डिस्कशन हुआ उसके बाद में और डॉक्टर राधा कृष्ण वर्मा थे जो बैंगलोर से आए थे उसके बाद में डीएवी की शुरुआत हुई तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मतलब तीन महीने चार महीने का जो समय हुआ इट वॉज अ टाइम ऑफ इंटेंस डिस्कशंस हम लोग चेन्नई में थे और चेन्नई में हम लोग के जितने भी स्कूल थे वो सारे चेन्नई में हैं कोई चेन्नई से बाहर नहीं है और हम लोग के पास चेन्नई में एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली रख पड़ा हुआ है पिछले 15 सालों से तो हम लोग का फोकस था कि हम लोग उसको डेवलप करें पर ये जो अपॉर्चुनिटी आई कि इसको कोई दिशा देनी है और कुछ काम करना है तो वी पुट इट बिफोर द कमिटी एंड वी सेड लेट्स फर्स्ट स्टार्ट दिस क्योंकि देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ऑलरेडी देयर एंड लेट्स गेट दिस गोइंग जो चेन्नई का काम है वो हम लोग करेंगे बट लेट्स गेट दिस स्टार्टेड इमीडिएटली वी गॉट ओवरवेलमिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर कमिटी एंड वी वेंट अहेड तो दिस इज व्हाट हैपेंड दिस इज अ ड्राफ्ट लॉन्च पोस्टर गिव्स यू अ सेंस ऑफ ऑल दैट वी हैड डन academic year 2017-18 we only started with LKG we didn't start with UKG the proposition was high quality education at affordable cost combined with Vedic values and this was the campus and this is how we started so this was started in this was an advertisement we placed in the paper in our brochures bane the 4 months of visits so he had visited on 18th of December and on 6th of April the school had its foundation वहां का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो फरवरी मार्च तक खत्म हो जाता है और हम लोग एक्चुअली थोड़े लेट थे इन अनाउंसिंग आर एडमिशंस एंड ओपनिंग ऑफ द स्कूल तो हम लोग जब स्कूल को शुरू किए तो वी वर हैविंग 10 स्टूडेंट्स इनफैक्ट दो दिन पहले वी वर हैविंग 8 स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन था कि करे या नहीं करे 8 बच्चों के लिए इतना बड़ा मतलब वो काम करना कैसे पॉसिबल होगा बट इस तरफ से महाजन जी ने हम लोगों को एक अंडरराइटिंग दे दी थी कि कोई भी ऑपरेशनल लॉस होगा कैपेक्स होगा वो सब वी विल राइट इट ऑफ ठीक ना सो ही हैड अंडर रिटन दैट विच वॉज अ ह्यूज सपोर्ट एंड एट द अदर एंड हम लोग का था कि डीएवी ने अपना ब्रांड लगा दिया है मतलब हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि आप वी आर स्टार्टिंग नाउ सो वी कैनॉट गो बैक ठीक ना मोमेंट वी गो बैक वॉट विल हैपन टू दीज 8 स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड सो फार सो वी वेंट अहेड इन स्पाइट ऑफ 8 We started with 10 on the opening day. So, 2 more students join on the opening day, 2 or 3 more students. And now it is 37. And we are refusing further admissions because this means we will have to create one more class. And we were not prepared for that. But we have got overwhelming support from the community. We were a little doubtful earlier. And people have called up to ask, कि आप जो है सेकेंड क्लास में मेरा लड़का है थर्ड क्लास में लड़की है उसका एडमिशन भी ले सकते हो क्या एंड वी रियलाइज्ड कि उस एरिया में जो भी स्कूल्स है तो पौंडीचेरी इज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी उस एरिया में जो भी स्कूल्स है वो सारे ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो लोगों में मतलब दर्द तो हर एक के हृदय में रहता है भले ही वो भेजे उन स्कूलों में कि मेरा बेटा या बच्चा इंडियन वैल्यूज को लेते हुए स्कूल में जाएं तो उसी दर्द के कारण लोगों ने हम लोगों को कॉन्टैक्ट किया लोकल कम्युनिटी में कि वी वुड लाइक टू गेट एडमिशन फॉर आर चिल्ड्रन फॉर हायर क्लासेस, यू नो. और हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचे कि वी विल ओनली बी कंस्ट्रेन बाय आवरसेल्व्स. दिस इज अ प्लेस विच कैन सपोर्ट अ स्कूल गोइंग फॉरवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो दिस वॉज द प्लेस एट विच वी हैड अराइव्ड. तो जो इनिशियल थ्रस्ट था वो महाजन जी के कमिटमेंट ने हम लोग को दिया. अभी तो ये ऑपरेशनली तो ब्रेक इवन कर जाएगा, दैट्स फाइन, राइट. कुछ कैपेक्स वगैरह वो हम लोग डील करते रहेंगे, परंतु महाजन जी का जो सपोर्ट था कि यू डोंट वरी, आई एम, वी आर बिहाइंड यू, यू नो. नहीं तो हम लोग को अप्रूवल वगैरह लेने में 6 महीने और लग जाते, बिकॉज इट्स अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट ऑफ अ न्यू प्लेस, यू नो. तो वो सब को हम लोगों ने कट अक्रॉस किया, उस रेड रिबन को कट किया थ्रू दिस. सो एक्चुअली द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग दिस goes to as much to the team over here as to the team over there. So let's give a big round of applause. I will share with you quickly some of the photos of inauguration. So this is the entrance of DAV school in Puducherry, and a special havan was conducted on the reopening of, on the opening of the school, right. This is the havan being conducted. You will find members of the DAV committee. So sitting on that side is Vikas, who is my brother, who is a director of the DAV schools in Chennai. Next to him sitting over there is Dr. Radhakrishnan, who is the father of Rajneesh ji, who has been very supportive in managing all of this since morning. Right, so we conducted the havan and started the school. This is the havan being conducted. So these are the students who are there. Some of the kids you can see over here in uniform. 6th April was the day. She is the secretary of the DAV group of schools. Pramila ji is the lighting of the lamp. He is the president of the DAV group of schools, who is lighting the lamp now. Vinay Goharji, the lady on the further right, she is the principal of DAV Nursery Gopalpuram. Mrs. Bina, and she has been extremely helpful. Not helpful, she has gone out of the way to ensure that we replicate the systems of DAV Gopalpuram Chennai in DAV Puducherry. So parents come to DAV because it represents a specific quality, and she is the one who is responsible to maintain that quality. So she goes there every week for the last so many months now to make sure that whatever that we do over here is replicated over there. There is a teacher that we have hired, I mean we have kept on rolls over there, and she is the one who is responsible to replicate the system and support the teacher. So this is the students, you can count, maybe there are 12. So this was the students on the day one, right. Now this will be a much bigger line queue. So that's where we are. This is our website, davchennai.org. on davchennai.org you would be able to go ahead and see a specific site for DAV Puducherry, and we would like to make it as relevant to the parents. So I mean a lot of the notifications, messages and everything goes through our website. So the experience of the parents is online and digital. I would just like to take a 5 minute or 10 minute detour. We have got 12 minutes, right? So 5-6 minutes to talk about why are we doing what are we doing. Right, everyone identifies with the cause of education because it is thought as being given. But Arya Samaj has always espoused these causes in national and social interest. So Arya Samaj ka niyam hi hai ki samaj ka upkar karna is samaj ka mukhya uddeshya hai. Sharirik atmik unnati. To is unnati ko dhyan mein rakhte hue hi आर्य समाज इन सब प्रोजेक्ट्स में जाता रहा है, और मैं अभी 5-7 मिनट का डिटूर लूंगा उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए या उन कॉजेस को लेकर के जिसको लेकर के आर्य समाज हमेशा से सजीव रहा है. दिस थिंग इज जस्ट Well, I think there is some problem here. Is this something which we can sort out or? Sorry? Yeah, it's come. But it's not going down. Is it due to the heavy file? Yeah, I think it's hanging. I don't think then we can sort it out now. Let it be. I'll just speak to you otherwise, without the presentation. So people identify Arya Samaj with the course of education as being given. Matlab DAV, Arya Samaj, pichle 50-60, matlab 100 saal se upar ho gaye hain. In fact, 125 saal se bhi upar ho gaye hain. To ek tarike se synonymous ho gaye hain. Par main aapke samne jo baat rakhne wala hu wo ye hai ki Arya Samaj koi religious sanstha nahi hai. Arya Samaj ek kranti ka naam hai. जिसको कि स्वामी दयानंद ने ये घुटी पिलाई थी कि जो भी राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व होगा उसको आर्य समाज निभाएगा. तो उस समय जब एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उन्होंने मना कर दिया था कि मेरी कोई भी समाधि नहीं बनाई जाएगी. तो उनके मृत्यु के पश्चात 5-7-8 दिन में लोगों की बैठक हुई जो उनके फॉलोअर्स थे. उन्होंने कहा समाधि तो बनाने से मना कर दिया है, परंतु हम लोग भी हाथ पर हाथ बैठे तो रख करके तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो करना है. तो उनकी ऐसी समाधि बननी चाहिए जो कि जीवित रहे. व्हाट ए थॉट, जो कि जीवित रहे और जो कि कॉज को पूरा करे. तो उन्होंने पत्थर की और संगमरमर की समाधियां नहीं बनाई. उन्होंने कहा डीएवी बनेगी स्वामी दयानंद की समाधि, इन रिमेम्बरेंस ऑफ स्वामी दयानंद. और उस समय शुरुआत हुई थी डीएवी मूवमेंट की. और उसका दर्द जो था वो ये था कि उससे पहले जितने भी स्कूल्स थे, पहले बात तो स्कूल थे नहीं इंडिया में, गुरुकुल हुआ करते थे. तो गुरुकुलों का तो पतन हो रहा था क्योंकि उसको जो स्पॉन्सरशिप मिलनी थी स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार के अंदर चली गई थी का हुकूमत था, तो वो स्पॉन्सरशिप मिल नहीं सकती थी. तो गुरुकुलों का तो पतन हो रहा था. और इस तरफ मिशनरियों के द्वारा चलाए गए स्कूल्स खुल रहे थे, जिसमें कि ये तीन प्रकार ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहा था. तो डीएवी वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, एंड आई एम नॉट ओनली सेइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट वॉज सेटअप बाय इंडियंस. बिफोर दैट देर वॉज नो इंस्टीट्यूशन दैट वॉज सेटअप बाय इंडियंस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. मतलब गुरुकुल वगैरह जो राजे महाराजा के जमाने में थे वो एक अलग बात है. फर्दर DAV when it started, question ये उठा कि इसको मैनेज करेंगे कौन, क्योंकि स्कूल्स को और institutions को रन करने का जो एक्सपीरियंस है किसी इंडियन के पास था ही नहीं. तब महात्मा हंसराज जैसे लोग बाहर आए, जो कि 22 साल की उम्र में उन्होंने ये बात कही कि मैं अपना पूरी लाइफ, और वो अपने स्टेट के पंजाब प्रोविंस के टॉपर थे, मतलब टॉपर नहीं सेकेंड रैंकर थे. उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी लाइफ डीएवी में बिना किसी वेतन के सेवा देने को तैयार हूं. एंड ही वॉज टेकन अप एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डीएवी स्कूल. वो सेकेंड रैंकर थे, तो फर्स्ट रैंकर कौन था? वो जो आपके सामने चित्र उधर रखा लगा हुआ है वो गुरुदत्त विद्यार्थी का है. ही वॉज द फर्स्ट रैंकर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, नॉट यूनिवर्सिटी, पंजाब प्रोविंस यूनिवर्सिटी उस समय नहीं था. So he and Mahatma Hansraj came together, put the DAV foundation and started it. But DAV was a response to the education system that was being imposed on the Indian population at that time. But not only that, he actually, Arya Samaj turned towards all the social evils, jo hum log ke samaj ki hi kuritiyan thi, उनकी तरफ उनका मुंह हुआ. एंड दे एक्चुअली वेंट हैमर एंड टोंग्स बिहाइंड देम. वो कुरीति चाहे जाति प्रथा की हो, चाहे स्त्री शिक्षा की हो, चाहे शुद्धि आंदोलन हो, क्योंकि लोगों को बाहर कर दिया जाता था और वापस नहीं आने दिया जाता था, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, आर्य समाज हैज ऑलवेज रेस्पॉन्डेड टू एनी सोशल एंड नेशनल चैलेंज दैट हैज बीन पोस्ट टू इट. दैट वॉज ऑल्सो द टाइम वेन लाला लाजपत राय. सो दैट वॉज अ टाइम इन इंडिया, मतलब हम लोग आज उससे इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी हैव कम फार अहेड, बट दैट वॉज अ टाइम इन इंडिया वेन एपिडेमिक वॉज अ नॉर्म, राइट. सर्वाइवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज प्रिटी लो, राइट. तो बहुत सारे विधवा भी होते थे और अनाथ भी होते थे, और फिर से कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था दैट कैन टेक केयर ऑफ देम. तो आर्य समाज ने उस समय कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी काम कर दिए. एक तो जो विधवा विवाह था, दे एक्चुअली लेड द फाउंडेशन फॉर रीमैरिज, राइट. अदरवाइज देयर वुड बी, एक तो लड़के लड़कियों की शादियां 10-12 साल में हो जाती थी, यंगर भी हो जाती थी, आज भी कुछ गांवों में होती होगी, और उसके बाद में इफ दे गेट विडोड तो कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है कि उनका कोई सिक्योरिटी हो, कोई भी वो हो. तो दे स्टार्टेड फर्स्ट दिस, एंड सेकेंड दे एस्टैब्लिश्ड आश्रम्स फॉर बोथ विडोड एल्डरली विडोड वीमेन और विडोड वीमेन एज वेल एज आश्रम्स फॉर ऑर्फनेज ऑर्फन्स. सो स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फनेजेस वॉज अगेन अ मोमेंटस इनिशिएटिव दैट आर्य समाज हैड अंडरटेकन 150 years or 100, more than 100 years back. And that initiative was led by Lala Lajpat Rai. Unki bhi photo yahan lagi hui hai. Anyway, Lala Lajpat Rai. So, jo Arya Samaj Gandhi Dham ne kiya, actually is a continuation of that tradition. That tradition of providing relief to those who have been hit hard in one way or the other. And children are the hardest hit. So what we see over here is a culmination of an initiative that provided relief to children with an initiative that provides them high value education. And therefore Arya Samaj Houston should be applauded for continuing that tradition that Lala Lajpat Rai had started to provide for the orphanages. And we are continuing the tradition that Mahatma Hansraj and Guru Tat Vidyarthi had started of providing education to children. We see this as a core activity of the Samaj, be it in Houston, be it in Gandhidham, or be it in Chennai. And therefore, we always stand by such causes and such initiatives. Now, moving further, I will now wind up. I'll quickly share with you what we plan to do now. We have started with one section. So this is a graph that says number of classes or number of classrooms. So we have started in 2017 with one classroom that has 37 students. And this, our plan now, hum log ka ki jo, looking at the response of the community, overwhelming response, agar hum logo ka khud ka constraint nahi hota hai, so we plan to ramp it up to a primary school next year. A primary school means LKG, UKG, first, second, third, fourth, fifth. So 7 classes, 2 sections, makes it 14 classrooms. In the year following, our plan or our intent is to ramp it up to secondary/senior secondary. So we will add 5 more classes, 6th, 7th, 8th, 9th and 11th, 2 sections. So today we are 1, next year we are 14, in the year thereafter this would go up to 24. And the scale up goes after that. Eventually we have arrived at a model, and our DAV schools in Chennai operate on that model, wherein we say that what is the stable size of a school. Stable size of a school is boys and girls separate schools. We don't, Swami Dayanand had said, let the schooling should be separate for boys and girls. So we separate those schools. So boys are separate, girls separate, 5 sections each. which means 5 plus 5 makes it 10, into 14 classes, 140 classrooms. So what starts with 1 in the next few years should go up to 140. And therefore, a full-sized, full-scale school with all kinds of facilities that can compete, not just compete, but lead the best in Pondicherry. So the vision is the best school, affordable cost. Maybe, so right now it's on a 2-acre campus. We would need to expand. So maybe 5-acre campus, multi-facility, boys and girls separate, modern sports center. We also say this is because as schools move to outskirts of the city, it becomes a little inconvenient for parents to send their wards there. The proposition that holds is that they get better facilities than what they would get for the schools in the city. So sports facilities for schools that are on the outskirts is not an option but a necessity to maintain the proposition of the school amidst competition that it would get from schools that are located closer to the city. So for your knowledge, this place is located about 10 kilometers outside of Pondicherry. Right? And therefore, to make maintain its proposition, it would need to have that extra space for sports, etc., which schools in the city would be finding it difficult to provide. These are the people from our end. Vikas, who is actively managing the school, is the director. He is my brother. Pramila Goharji, I had shown her photograph earlier. She is the secretary, so she provides the overall leadership. I am the convener of the school, which means I need to do the coordination, particularly at a stakeholder level, to make sure everything is fine. Atul Nangiaji is the treasurer. And Beena ji, who I had pointed out in the photo, is the headmistress of DAV Nursery Gopalpuram, who has been made responsible for the academic curriculum and performance of the students over there. So these are the people, and these are this is our token of appreciation for those from this end who have been instrumental in making this a reality. So it starts with Dev Mahajan ji, who has who led this initiative. So I once again go back to those days when we were wondering whether or not we should be starting it, given our priorities, given our workload and all of that. But the push and the initiative that he showed actually motivated us to go ahead and do this. So thank you, Mahajan ji, for making this a success and supporting us. Yesterday I met Shekhar ji. I understand. So until this time we were interacting with Mahajan ji primarily, but I understand there is a team behind him. We met Shekhar ji yesterday, but I am sure. So thank you to Shekhar ji. Thank you to everyone of you over here who has been behind this initiative. Dr. Radhakrishna Verma, who has been the person on the ground who has been managing it. Father of Rajneesh ji, Dr. Harishchandra called me. At that time, it seemed a far-fetched idea. I mean, okay, we will do something about it. But Dr. Radhakrishna ji was the one who pinned me down. I was in Mumbai, he was in Mumbai, and he said, let's meet this evening. I said, what's the urgency to meet this evening? But I said, not this evening, today I'm busy, let's meet tomorrow evening. And that's how he pinned me down. We got to the plan and we understood this was damn serious. Right? So ever since he has been providing the guidance, the support, very actively managing the construction of those. So some modifications had to be done to the school. So he was the one who led to the modification in the orphanages to give it the shape of a school. Dr. Harishchandra, who actually introduced this, he has been a mentor throughout. So I have been active in the social life for the last about 15 years, and he has been mentoring me for those last 15 years. Right. So thank you, Dr. Harishchandra. In fact, the initiative that he talked about, which was Vichar, he was one of the mentors of Vichar, which is, I'll take a minute to talk about that. But then Arya Samaj Gandhidham as well, who have been supportive and who have actually, so who own the place. So unless they signed the lease, unless they proactively supported it, this couldn't have been a reality. But they were a good support. Thank you to Arya Samaj Gandhidham and Vacho Nidhi ji to make it happen. So... So now we move to the conclusion. As we move to the conclusion, there are two key points I would like to say. One is a quick introduction to Vichar. Vichar is a multimedia initiative that produces films and programs for in the context of RSMRs, but primarily driven towards students and the younger population. My urge would be that this being a multimedia RSMR with all the facilities can actually make use of these halls to showcase the films of Vichar, which most other RSMRs cannot. These films nevertheless come on Aastha channel from 9:30 to 10. Does Aastha come here? So I don't know, whatever is the time, but you can even watch these on Aastha channel, but you could even make use of this hall for special screening of some films, which I am sure would be very relevant for the audience that you would be having, particularly the younger audience. In that context, this is a film on Swami Shraddhanand. So Swami Shraddhanand's photo is over there. He symbolized the struggle that RSMRs passed through, right, against multiple causes. So he stood for education, he stood for Shuddhi Andolan, he stood for Dalit emancipation, he stood for freedom, he stood for widows, right, and eventually he paid for all this struggle with his life. Right, so this is a film, it is not a documentary. It has been enacted and shot. Right, we have got this, so I am presenting a copy of this film over here to this Hari Samaj. I would request Mahajan ji.
Namaste. We met these two superstars of RSMRs in December. And I can't express how supportive they have been. When we met in Pondicherry, I was questioning them, is it right place for school and so on. But they said, don't worry, we can start this year and things will be. And my gosh, then we worked day and night. We were talking especially with his younger brother because he is the one who was actually doing the work to get this school established. And I don't know how to thank God, maybe who made the connection. And I'm sure this school in few years would be one of the top-notch school in Pondicherry. This I'm sure. May God bless these two and all the members of RSMRs Chennai. Thank you.
And the final point. Thank you, Mahajan ji, for your words of appreciation. The final point is, the DAV RSMR Chennai is on a path of using technology to solve for today's issues. And the biggest issue that we feel comes in our way is the education of the next generation, not the maths, physics, chemistry part, right? But education around the life skills. Right, so that we believe is a big challenge that we are facing, and I am sure you are recognizing it as well, because I understand there are these schools and big initiatives that we see over here. I would invite RSMRs Gandhidham, RSMRs Houston, and others in individual capacity as well, to become a part of the digital change that we are bringing, because digital change doesn't get restricted by boundaries, right? Doesn't get restricted by geographies. So just one example, if we create something online, that online service is as much available over here as it is to people over there. So this is just an invitation. We can talk more about it. We have got a report of DAV Puducherry over here. You could go through this. Thank you so much. Sorry for taking a few minutes extra. But yeah, I am done. Thank you.
का आय समाज का एक युवा कार्यकर्ता और नेता जो दक्षिण भारत में जहां से हमें ज्यादा प्रकाश नहीं दिखाई देता था. अब चेन्नई में और चेन्नई के साथ पांडिचेरी को आगे लेकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो सकता है. मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि डॉक्टर वर्मा जी से हम सब, डॉक्टर राधाकृष्ण वर्मा जी से हम अच्छी तरह परिचित हैं. वो यहां आते हैं हर साल और उनका योगदान हमने देखा और वो बेंगलोर में है और कालीकट में भी एक बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है आचार्य राजेश जी के नेतृत्व में. आपको जानकर हैरानी होगी, कालीकट में 3000 परिवार दैनिक अग्निहोत्र करते हैं. 3000 परिवार दैनिक अग्निहोत्र. और मजे की बात है, ये तीनों सेंटर कालीकट, बेंगलोर और चेन्नई, युवा नेतृत्व है इन सबके पास. आचार्य राजेश जी भी इसी तरह से युवक हैं और इनका तो देखिए, आपने देखा, ही इज डूइंग वर्किंग फॉर ए लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म. जो कोई इस तरह के जॉब में काम करते हैं उनका जीवन बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है. इसके अलावा हाउ इज ही गिविंग टाइम, इट इज ए मिरेकल. इट्स यू हैव टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव इट, बट दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. तो मैंने विकास जी को कहा, ये पीयूष जी को कहा, क्योंकि कालीकट में अभी बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था अप्रैल के फर्स्ट वीक में और हमारे एमडीएच मसाले वाले ने, उन्होंने महाशय धर्मपाल जी ने स्पॉन्सर किया 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, तो उसका उद्घाटन हुआ. ये व्यस्त है, नहीं जा पाए, पर विकास जी गए हैं तो मैंने इनको बहुत सलाह दी है और ये जानते हैं ये सब बातें. मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है कि चेन्नई, बेंगलोर, कालीकट और दिल्ली में भी ये बहुत अच्छे युवा नेता हमारे हैं, श्री विनय आय, ये सब मिलकर आगे बहुत अच्छा काम करेंगे. हम सबकी बहुत शुभकामनाएं. जैसा आप जानते हैं, हम